ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. اس کتاب میں سے آج جن صحابی کی کہانی ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. ان کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ جانتے ان کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہوسٹ تھے، میزبان رسول. تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر سنائی تھی ان کی زندگی ہی میں، اور وہ کیا تھی؟ انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے دامن میں دفن کیا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی تھی، یہ شہید ہوں گے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا جائے گا، اور یہ بات بالکل پوری ہوئی تھی، آپ کی یہ بات کہی ہوئی. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کس طرح سے سبق آموز ہے. اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے ہوئے ان کہانیوں کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا. آپ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی کنیت ابو ایوب تھی، اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا. مسلمانوں میں کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی عظمت کا اعتراف کرنے والا نہ ہو، معترف، اعتراف کرنے والا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دل ربا ہے، یعنی دل کو اچھی لگنے والی ہے، کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو دل چاہتا ہے. تو آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ چلیے پھر سناتے ہیں آپ کو بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے رہنے والے آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے. وہ سب آپ کے لیے چشمے براہ تھے. آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قبا میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی. یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھی، یعنی اپنے ہاتھ سے رکھی، جو آج مسجد قبا کے نام سے معروف ہے. وادی قبا میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا. یثرب کے سردار، یہ یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام. یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو. ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں. آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے کہ میری سونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے. اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں. دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی عزت حاصل ہو جائے. جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور ناامید ہو جاتے، اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی. ذرا اپنے آپ کو سوچیے اس جگہ، اگر ہمارے گھروں کے سامنے سے اللہ کے نبی کی اونٹنی گزر رہی ہو اور ہو کہ جہاں بیٹھے گی وہاں ہو گئے، تو دل کیسے حلق میں آ جائیں گے اچھل اچھل کے کہ شاید یہ میرے ہی گھر میں بیٹھ جائے. لیکن جب آگے چلی جائے تو پیچھے والوں کو مایوسی ہونے لگتی کہ اب ہمارا یہ نام نکل گیا. لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی. لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے. ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ کس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے. ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے. تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے. फिर जल्द ही दोबारा इसी पहली जगह पर आकर बैठ गई। इस मौके पर हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। फौरन आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदेद कहा। इतने खुश हुए गोया दुनिया के खजाने हाथ लग गए। आपका सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। तो ये था पहला बाब। इसका उनवान लिखिए, ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर। अल्लाहु अकबर। ये है कि जिसके बारे में मुझे इस वक्त सिर्फ वही बात याद आ रही है कि मुस्लिम किसको कहते हैं, कि वो ऊँट जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, जहाँ वो कहे बैठ जा वो बैठ जाए, जहाँ वो कहे चल चल पड़े। वैसे तो हर मखलूक ही इसी तरह की मामूर है, लेकिन इस वक्त इस ऊँटनी का उठना और बैठना हकीकतन इस चीज़ की वाज़ह दलील थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया वो एक जानवर के ज़रिए से उसको काबिल करवा दिया, यानी उसको लागू करवा दिया। बहुत सारे अमल हैं हमारे लिए इसमें, देखते हैं एक एक बात को। थोड़ा सा इसके लिए आपको ये भी बता दूं कि अबू अय्यूब अंसारी बहुत ग़रीब सहाबी थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना आने की ख़बरें पहुंची, तो अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आएँ और मेरे मेहमान बने। तो वो कहने लगें कि अबू अय्यूब तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें अपनी औकात पता है? अल्लाह के नबी का इंतज़ार करने के लिए तो बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, वो निगाहें बिछाए हुए, और साद बिन माज और असद बिन ज़रारा जैसे बड़े बड़े लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे अल्लाह के नबी के मदीना आने से पहले, और वो इसका मोटिव बने थे, इंसेंटिव बने थे। कहा कि तुम्हारे घर कौन आएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, यानी मेरा दिल है। तो उन्होंने उनसे यही कहा कि अच्छा, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से कहो। और कहते हैं कि ये चुपके चुपके तैयारी कर रहे थे, किसी को बताते हुए भी शर्म आती, क्या कहूँ, कोई क्या सोचेगा कि एक समझे गदागर है और उसके घर में एक बादशाह आ जाए। हर इंसान को अपनी औकात का पता होता है, और इसी तरह ये चुपके चुपके बातें कर रहे थे, लेकिन इनका इखलास इतना था कि बड़े बड़े सरदारों के घर से हटके ऊँटनी जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके घर के आगे आ गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना किसी काम के करने का इखलास होता है, दिल में तड़प होती है ना सच्ची, तो अल्लाह उनसे काम करवाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दीन के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कह दिया जाए तो ना नहीं कर सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो मजबूरन बांध दिए जाते हैं, कोई उनको कहता है देखो अब ये काम तुम कर लो और किसी को नहीं, तुम मुनासिब हो। लेकिन काम वो होता है जो आपके दिल से उठे। बाज़ दफ़ा आप ख्वाब ही देखते रहते हैं एक चीज़ का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो लिहाजा सच्ची तड़प रखें तो काम खुद बखुद होंगे। फिर ये जो शुरू में बात हुई कि मशरिक़ और मग़रिब में इनका नाम बुलंद कर दिया, तो ये आप इनकी ज़िंदगी के आने वाले दिनों में देखेंगे कि नबी सल्लम के बाद फिर ये फतुहात करते हुए मग़रिब की तरफ भी निकले थे, इस वजह से वहाँ इनका नाम हुआ। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ जो हमारे अमल की है वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आना। कौन नहीं जानता कि मक्का में क्या हालात कर दिए गए थे जिसकी बुनियाद पर आप मक्का से निकाले गए थे। और ये वो दिन थे कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस हाल में आ गए कि अब यहाँ नहीं रहेंगे। बज़ाहर हालात कितने तंग हो गए, और जब अपनों से ये बेगानगी होती है तो फिर इंसान का दिल ज़्यादा दुखता है। और हकीकत ये है कि सिर्फ अपने रिश्तेदार ही लोग अपने रिश्तेदार नहीं होते, वो लोग जिनके साथ दीन के ताल्लुकात हों, जिनसे अल्लाह के दीन के लिए इंसान की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ हों, उनकी बेगानगी इंसान को बड़ा रुलाती है। 10 लोग भी अगर आपके उस काम में शामिल हों, लेकिन वो लोग जो अल्लाह के लिए आपके साथ मिलते और बिछड़ते हैं, अगर उनमें से कोई एक शख्स भी अगर आपके उस काम को बुरा कहे या उसकी तरफ से बेतनाई का सबूत मिले, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कैसा बदला दिया, किस हालात में आप यानी वहाँ से निकले थे, लोग मारने और मरने के लिए थे, और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा, अपनी मौत आप मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके दिल के इखलास के लिए क्या खूबियां आपके लिए रखीं कि लोगों को आपके लिए रास्तों में खड़ा कर दिया। फ़र्क इतना ही है कि मक्का वाले रास्तों में खड़े होते थे लेकिन पत्थर लेके कांटे बिछाने के लिए, और मदीना वाले रास्तों में खड़े हुए तो फूल लेके, ये फ़र्क है। और यहाँ से ये बात जहन में रखिएगा कि सच्चे दाई दीन को अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह के नबी की सारी दावत और सारी चीज़ों का मकसद क्या था कि आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो तो जब रब के पैगाम के लिए कोई निकलता है तो अल्लाह ताला फिर ऐसे ही लोग उसके रास्ते में खड़े कर देते हैं। फिर आप देखिए यहाँ से उस दौर की एक पिक्चर भी नज़र आती है कि बहुत बड़े बड़े घर नहीं थे उनके, बहुत डेकोरेटेड होम्स नहीं थे, बहुत लग्जरियस सोफ़ाज़ और बेड्स नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी जैसे इंसान या दीन के नाम के ऊपर जो लोग यानी उनको फ़ायदा देते हैं तो उनके लिए उनकी आंखें कैसे लगी रहती थी, मुंतज़िर होती थी। आज भी अमूमन ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो इस चीज़ को बहुत दफ़ा देखा, प्रैक्टिकली देखा, और बल्कि उस वक़्त मुझे और तकलीफ़ भी होती है सोच के कि आज हम अगर अल्लाह के दीन के काम के लिए निकलते हैं तो कितनी मोहब्बतें मिलती हैं और कितनी यानी अपनाइत मिलती है। लेकिन एक वो वक्त था कि जब अल्लाह के नबी सल्लम और दूसरे अम्बिया कराम, ख़ास तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आता है तो लोग किस तरह से आपके साथ करते थे। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि जब बज़ाहर कभी कभी मुखालफत आती है, जैसे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत आज़माया और 950 साल में सिर्फ 70 से 80 लोग बने, अब एकदम पिटी फीलिंग आती है कि अच्छा शायद फिर ऐसे ही होगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और वो क्या कि अगर चारों तरफ आपकी मुखालफतें थीं, आपको ठुकराया और छुटकाया जा रहा था, लेकिन वो जो 70 80 लोग थे ना वो बड़े मुखलिस थे। अगर आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में झांकें, और प्रैक्टिकली अगर हम मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर उस दौर में जाके देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि हज़रत नूह का दिल बेचैन नहीं होगा। वो 70 80 लोगों से उनको ऐसी मोहब्बत मिलती होगी, ऐसी मुआवनत मिलती होगी कि वो उस काम के लिए अपने आप को खुश पाते थे। बज़ाहर दूर से ऐसे लगता है कि दीन की और दीन वालों की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों के दिलों में ज़रूर खैर डालता है। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद कुबा आपने बनाई, इससे भी एक चीज़ पता चलती है कि इंसान कहीं चाहे थोड़े दिन के लिए हो गुजरे, वहाँ बाद में काम करने की कुछ ना कुछ दाग बेल डाल देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चंद दिन कुबा में रहे थे और मस्जिद बन गई, और मस्जिद उस दौर की ऐसी है जैसे आज के दौर का दीन का इदारा, कि वहाँ से फिर इल्म की शम्में फूटी और किस तरह से लोग उस काम को लेके आगे बढ़ाया। तो मैं इस चीज़ को पढ़ते हुए अपने लिए अमल ये ले रही हूँ कि जहाँ भी रुकना है, चाहे 1 घंटे के लिए या 1 दर्स के लिए रुकना है, इंशाल्लाह इस नीयत से रुकना है कि वहाँ काम शुरू हो जाए, वहाँ कोई ना कोई दाग बेल डल जाए, वहाँ अल्लाह का दीन फैल जाए, चाहे वो 2 या 4 लोग हों। और ऐसे काम में वो लोग जो हिस्सा डाल देते हैं फिर उनके नाम तो बुनियादों में रहते हैं ना। अब देखिए अबू अय्यूब अंसारी का नाम इसके अलावा आपने कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ एक मेज़बान बन गए, खाली घर था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मेरे पास तो कंफर्टर्स नहीं है, मैं कैसे आपको बिठाऊंगा, लेकिन जज्बे अच्छे थे, आप ज़मीन पे सो गए तो क्या हुआ। दीन की तो शान ही ये है कि वो सादगी और ख़ुशी को चाहता है, लेकिन ये कि काम कितना शुरू हुआ। और अगर आप सोचिए कि मदीना में जितना काम उसके बाद हुआ, इसमें कहीं ना कहीं तो अबू अय्यूब अंसारी का हिस्सा जाएगा ना। और किस तरीके से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला करते थे, अब आगे सुनिए। इनकी तो वाकई अदाएँ इतनी दिल लुभाने वाली हैं कि दिल चाहता है कि इनका जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया जाए। यहाँ सिर्फ एक दो बातें जो इस हिस्से में बहुत ही खूबसूरत हैं जिस पे तवज्जो थोड़ी सी दिलाना चाहूँगी, और साथ साथ बेचैन भी हूँ कि अगली भी पढ़ूँ ताकि आपको इनकी बाकी बातें भी मालूम हो। इसमें एक और चीज़ जो देखिए कि यसरब के सरदार रास्ते में आपके इंतज़ार में थे। अब देखिए कि सरदार अपने वक्त के बहुत बारोब लोग होते हैं, ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके साथ यानी लोगों के दिल रोब से भरे होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ थी कि वो बड़े बड़ों को अल्लाह ने रास्तों में खड़ा कर दिया एक दीन के नुमाइंदे के लिए, और वल्लाह ही ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि वो लोग जो दुनिया की निगाहों में बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग उनसे टाइम लेना चाहते हैं, मतलब घंटों इंतज़ार करते हैं कि सिर्फ उनसे एक दफ़ा हाथ मिला लें, लेकिन कई बार ऐसा देखा कि दीन के रास्तों में वो यूं खड़े होते हैं जैसे दिल बिछाते हुए। और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी के लिए जो मोहब्बतें थी उसका तो कोई तकाबुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो वहाँ इखलास था, जो वहाँ हिकमतें थी, वो आज हम में तो है ही नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत दफ़ा फील करती हूँ। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी साथी हैं हमारी, बहुत शहर की मारूफ हैं, बहुत लोग जानते हैं, यानी लोग इस बात से बड़े खुश हो सकते हैं कि उनको मिलें या हाथ मिलाएं। तो एक लंबा अरसा जैसे वो मेरे पास क्लासेस में आती थी और बैठती थी अकेले में और बात करती थी, और वो ख़ुद कहती थी कि मुझे नहीं समझ आता क्या मेरा दिल खिंचता है मुझे इधर आने पर। जब मैं लोगों को बताती थी ना कि वो क्लास में, तो लोग कहे अच्छा वो आपकी क्लास में वो आती हैं, आपको फ़ोन करती हैं। मैंने कहा जी फ़ोन कर दूँ, क्या हुआ फिर क्या हुआ। लेकिन जैसे लोग तसव्वुर नहीं करते, तो वो कहती थी कि सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबको हंसाती हूँ, बातें करती हूँ, खुश करती हूँ, लेकिन मुझे आपके पास आके सुकून मिलता है। फिर अपने दिल की बातें, और बहुत मेरी अच्छी दोस्ती उससे, मैं कहती थी देखो तुम आओगी ना तो तुम्हारे पीछे फौजें आएंगी। तुम एक हो लेकिन तुम्हारे पीछे लश्कर लगे हुए हैं, इनके लिए काम करो। और वाकई एक वक्त ऐसा था कि उसने ऐसा काम किया कि शायद ही मैं उसको कभी नहीं भुलवा सकती, कि जितना उसने उस काम में हिस्सा डाला और फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो लिहाजा असल इज़्ज़त दीन से मिलती है। आप जब ऐसे लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर्स, जिनसे लोग बात करने में तरसते हैं, और अगर वो दीन की बात सुनने आपके पास बैठते हैं तो उस वक्त आपको दीन की सच्चाई समझ आती है। अपनी बात नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे तो लफ्ज़ भी खोखले हैं, बातें भी नहीं, लेकिन ये अल्लाह का दीन है जो लेके आता है। अगर हमारे पास दीन आ जाएगा, आप देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लोग अंदर से खोखले हैं, ऊपर से बड़े नाम हैं, वो आपके पास आएंगे। क्यों? कि आपके पास वो चीज़ है जो उनके दिलों की दवा है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ पता चली कि ऊँटनी पहले बैठी फिर उठ गई। अब जब बैठी होगी तो उस वक्त अबू अय्यूब के दिल का क्या हाल हुआ होगा, ज़रा सोचिए। और जब उठ गई होगी तो क्या हुआ होगा, और फिर जब दोबारा आई होगी तो क्या हुआ होगा। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा खुशियाँ जो हैं वो आँख मिचोली खेलती हैं। इंसान के जज्बों को अल्लाह ताला देख रहा होता है कि ये महसूस क्या करता है, इसको कैसा लगता है ये काम, ज़रा मैं इसको आजमा के देखूँ। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मुझे लग रहा है कि किसी का रिजल्ट आना हो और वो उम्मीद रखे कि अच्छा देखना मेरे सब अच्छे नंबर आ जाएंगे, हैं, फिर एकदम कोई इसको कह दे कि हाँ तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, तुम फर्स्ट आ गए, मिसाल है। फिर वो क्यों, मैं फर्स्ट आ गया, अच्छा, फिर थोड़ी बहुत ओ नो 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 सॉरी, वो कुछ हमारे सिस्टम का कोई नक्स था, तो नहीं आप तो ऐसा है कि आपकी थर्ड पोजीशन आ गई। और जब कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या पोजीशन आ गई, और एकदम फिर ओह नो नो आपका नाम क्या है, अच्छा ये ओह नो यू आर द फर्स्ट। क्या दिल की कैफियत हो रही है अंदर तक, वो इंसान के रूह होती है ना, मेरे हाल दोबारा उस चीज़ के मिलने की ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ छीनने के बाद मिलती है तो उसकी बहुत खुशी होती है। आपको भी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी खुशियाँ मिली होंगी और ऐसी आँख मिचोलियाँ आपके साथ भी हुई होंगी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस तरह से आज़माया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब और क्या मामले हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हो का घर दो मंजिला था, यानी डबल स्टोरी था। ऊपर वाली मंजिल को खाली कर दिया गया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़याम करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहाइश के लिए नीचे वाली मंजिल को तरजीह दी। अबू अय्यूब अंसारी ने आपके हुक्म की तामील करते हुए जहाँ आपने रहना पसंद किया वहीं इंतज़ाम कर दिया। जब रात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और इनकी बीवी ऊपर वाली मंजिल पर चले गए, लेकिन फ़ौरन ख्याल आया कि अफसोस हम क्या कर बैठे, क्या हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम करेंगे और हम ऊपर, क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चलें फिरेंगे, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही के दरमियान हायल होंगे। अल्लाह अकबर, कैसे जज्बात हैं, ये तो आपकी खिदमत अकदस में गुस्ताही है, हम तो तबाह हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी इंतहाई हैरान और परेशान थे, कुछ सुझाई न देता था कि अब क्या करें। दिली सुकून जाता रहा और परेशानी के आलम में दीवार के साथ लग कर बैठे, इसी गम में गोते खा रहे थे और इस बात का ख्याल रखा कि वो कमरे के दरमियान न चलें। जब सुबह हुई तो अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, बखुदा आज रात हम दोनों रात भर जागते रहे, एक लम्हा भी सो न सके। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्यों? अर्ज़ की, मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि हम छत के ऊपर हैं और आप नीचे तशरीफ़ फरमा हैं, हम दीवार के साथ चिमट कर बैठे रहे कि अगर हम छत पर चलेंगे तो छत की मिट्टी आप पर पड़ेगी जो आपको नागवार गुजरेगी, और दूसरी बात यह है कि हम आप और वही के दरमियान हायल हो गए हैं। ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू अय्यूब गम न करो, नीचे रहना मेरे लिए आरामदेह है, क्योंकि मुलाकात की गरज से कसरत से लोगों की आमदोरफ्त है, यानी लोग मुझे मिलने आते हैं तो बार बार सबको ऊपर आना जाना मुश्किल होगा। हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लिया, लेकिन एक खुनक ठंडी रात, खुनक रात में हमारा मटका टूट गया और पानी छत पर बह गया। मैं और मेरी बीवी जल्दी जल्दी लिहाफ से खुश करने लगे कि कहीं ये पानी नीचे टपक कर رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر ہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا، آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا اور آپ اوپر والی منزل میں رہنے پر رضامند ہو گئے اور ہم نیچے والی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک ابو ایوب الانصاری کے گھر قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقل طور پر ابو ایوب الانصاری کے پڑوسی بن گئے۔ یہ تھا آپ کا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ اس کا عنوان لکھتے ہیں، عجیب میزبان۔
السلام علیکم۔ اس کو سن کے اتنا رشک آ رہا ہے ان کے اوپر اور اتنی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسی ایک فیلنگز ہیں کہ نبی آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں، اور فوراً ہم امیجن کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں رہ رہے ہوں تو ہمیں کیسا فیل ہو، اور پھر ہم کیا کریں۔ میرے تو دماغ میں آتا ہے کہ جلدی جلدی چیزیں نکال کے، سبحان اللہ، ہمیں تو یہی سب سے پہلے دل میں آنے لگ جاتا ہے کہ کیسے کریں گے، کوئی سب سے اچھی چیز ہو جو کوئی خراب چیز نہ ہو اور یہ نہ ہو۔ عام مہمان کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ سوچ کے سکتا ہے کہ ہائے واقعی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کچھ بولنے میں، کوئی بار بار پوچھنے میں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں، اور اگر میں نے کہا اگر میں ہوتی تو میں کیا کرتی، تو میں نے کہا میں تو یہ بھی نہ سوچ سکتی کہ ان کو یہ کہہ دوں کہ آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں، سبحان اللہ۔ لیکن بہت اس کے اندر اچھی ایک بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سادگی کی بات کی، کتنی سادگی کے اندر بھی انہوں نے ان کو یہ نہیں کیا کہ جیسے ہم اپنے بجٹ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ مہمان یہ نہ دیکھ لیں ہمارے گھر کے اندر کہ ایسا گھر ہے اور ویسا گھر ہے، اور فوراً ہسبینڈ سے فرمائش کرنے لگ جاتے ہیں، اب مہمان آ رہے ہیں اب یہ بھی چیزیں لا کے رکھ دیں، اب وہ بھی کر دیں، تو اتنے ان کے بیچاروں کے اوپر مہمان کو بوجھ بنا لیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ انہوں نے کتنی سادگی کے اندر بھی، اور مہمان کی بھی بات ہے کہ مہمان بھی کبھی چیزوں کے اوپر نہ دیکھے کہ ان کے گھر میں کیا کیا ہے، ہمیں یہاں پہ آرام ہے یا نہیں ہے، ان کا اخلاص اور یہ چیزیں بس دیکھنی چاہیے۔
آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں بعض دفعہ بہت اچھے جذبات ہوتے ہیں، ہم نیک لوگوں سے تعلق رکھیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، بلائیں، خدمت کریں، لیکن ہم کیوں ڈر جاتے ہیں، نہیں پھر ان کو پتہ چل جائے گا، پھر تو کیا ہوا، پتہ چل گیا تو کیا ہوا، وہ بھی انسان ہے، اور آپ مجھے بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت ہے نا، جب کسی کی بات سنتا ہے تو اس کو پھر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ میں سچ کہوں گی کہ میں یہ سنتے اور پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی پچھلے 4-5 سال سے، جب سے خاص طور پہ ہمارے ٹرپ شروع ہیں، میرے سامنے اتنے اپنے ہوسٹس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ذہن میں، اور مجھے ایک سے ایک لگتا ہے کہ ہم تو ایک ابو ایوب انصاری کی کہانی سن رہے ہیں، اور میرے پاس تو اتنی مثالیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ظاہر سفر میں رہتے ہیں، قیام ہوتا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کہیں آپ درس کرتے ہیں، 1 گھنٹہ گئے آپ نے درس دیا، وہ بھی سن کے بات کر کے ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن جب آپ کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو بہت بیسکس، بہت نجی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں نا، ضروریات کا خیال، پھر باتیں کرنا۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب میں کسی کے گھر جاؤں تو ہوسٹ میں سے جو بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہتی ہوں اچھا ہم رات کو بیٹھ کے باتیں کریں گے، دن میں تو سارا وہ یہی کہتی ہیں آپ ٹائٹ اسکیجول نہیں رکھا کریں، آپ سب ادھر سے درس ادھر، اور ہمیں تو گھر میں موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا۔ تو میں کہتی اچھا دیکھیں میرے میاں جب سو جائیں گے نا تو آپ بھی فارغ ہوں گے نا، تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ تو وہ اس وقت پرسنل فیلنگ، مطلب بعض لوگوں سے اتنا پھر ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، جیسے بہنوں والا پھر اپنا دکھ سکھ باتیں چیتیں، یعنی میں کانشیسلی اس چیز کا اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں، یا فجر کے بعد یا کچھ جب گھر والی بھی فارغ ہوں اکیلی اور میں بھی، تاکہ ان کے ساتھ یہ باتیں ہو سکیں۔ تو واقعی یہ چیزیں میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ محبتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی خالص ہوتی ہیں۔ تو اس حصے میں آپ دیکھیے کہ جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ واضح ہی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ دل میں ان کی کتنی رسپیکٹ تھی نا آپ کی، کہ اوپر والے فلور پہ چل پھر نہیں رہے، دیواروں کے ساتھ ست لگ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے ادب بھی پتہ چلتا ہے، بعض لوگوں میں ادب کی کمی ہوتی ہے، بعض لوگ بہت زیادہ یعنی کھلاتے پلاتے اور یعنی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی عزت ہے، لیکن یہ جو دل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل کتنی محبت ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اوپر کون نیچے کون، یعنی ظاہری ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए कि उनके दिल की चीज़ है। और ये मैं महसूस करती हूँ कि ऐसा होता है। जब मैं मिसाल दूंगी ना, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, तो जब मेरी मदर इन लॉ साथ हो, मैं कभी आज तक उनके साथ आगे मैं नहीं बैठी। यानी मुझे एक फीलिंग आती है, हालांकि समटाइम वो कभी कहें कि चलो तुम बैठ जाओ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगेगा, आप आगे बैठे मैं पीछे अच्छी हूँ। जैसे मेरी नंद भी हों, अगर कभी वो साथ बैठे, बड़ी हैं यानी यंग है माशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैंने को आप आगे बैठ जाएं, क्योंकि एक फीलिंग आती है ना कि आप किसी के साथ। तो ये अदब जो होते हैं ना, ये फिर इंसान को बहुत रंग लगाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि मैं ये सोच रही थी कि उनका मटका टूट गया है और पानी नीचे जाने लगा, तो मेरे जहन में आज के दौर के घर आ रहे थे। माशाल्लाह आप जो डबल स्टोरीज घर होते हैं, हम भी सुनते हुए यही सोच रहे थे ना, अच्छा जी उनका घर डबल स्टोरी था, तो इसी तरह का बड़ा पॉश घर और बड़ा खूबसूरत दिखता, लेकिन कच्ची छतें थी, पानी बहेगा तो उसके साथ जो है वो नीचे पानी जाने का डर होगा। फिर इसमें एक और चीज़ भी देखिए कि नबी सल्लम ने कहा कि लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे तो उनकी सहूलत के लिए। तो ये होता भी ऐसा अमूमन कि जब आप कहीं भी रहते हैं तो फिर कुछ और लोग भी जमा होते हैं, तो आपने उनकी भी सहूलत का ख्याल किया कि उनको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर आखिर में देखिए कि नबी सल्लम ने फिर उनकी बात मान ली कि ठीक है चले मैं ऊपर चला जाऊँ। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप किसी के घर मेहमान बन के जाएँ, आप अपनी राय तो दे सकते हैं कि नहीं मुझे ये कंफर्टेबल है या मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन अगर आप फील करें कि उसकी वजह से घर वाला फील नहीं सही कर रहा, तो फिर आप बदल सकते हैं। यानी उसमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस पर आप मेहमानी के और मेज़बानी के हकूक दे सुनते हैं, एक लेक्चर भी है वेबसाइट पर, छोटा सा मेज़बानी के हकूक सुन सकते हैं, यानी आप या पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए एक बुक भी होती है आदाब ज़िंदगी के नाम पे। तो बहरहाल अमल की बातें बहुत सी हैं। एक और छोटी सी चीज़ इसमें मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ के घूंटनी आगे गई थी, वहाँ पे मस्जिद बन गई थी। अबू अय्यूब अंसारी को उस वक़्त जो एक गम मिला, ये बात बड़ी काबिल गौर है और इसको लिखिएगा, कि जब ऊँटनी बैठ के उठी, फिर आगे गई, फिर पीछे आई, तो उस वक़्त अबू अय्यूब अंसारी को गम मिला होगा ना, तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन वो तकलीफ़ हमेशा की खुशी का सबब बन गई। क्यों? कि अल्लाह के इरादे सिर्फ अबू अय्यूब अंसारी को चंद महीने तक खुशी देना नहीं थे अल्लाह के नबी के रहने की, बल्कि मुस्तकिल आपके नेबर बन गए, उसी के करीब मस्जिद नबी बनी और नबी सल्लम मस्जिद नबी के साथ हुजरों में थे, और इस तरह अबू अय्यूब अंसारी के मुस्तकिल तौर पर पड़ोसी बन गए, यानी नेबर में आ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि बाद दफ़ा ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं, जो बुरी लगती है, लेकिन बाद में फिर उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। चले आगे देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे? फरमाने लगे, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया, बखुदा यानी अल्लाह की कसम, मैं भी इसी भूख की वजह से घर से निकल आया हूँ। दोनों यही बातें कर रहे थे कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इधर आ निकले। आपने दरियाफ्त फरमाया, आप दोनों इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? दोनों ने बयक ज़ुबान अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी भूख ही की वजह से घर से निकला हूँ। फिर आपने फरमाया, मेरे साथ आओ। और आप अलैहिस्सलाम इन दोनों को अपने हमराह लेकर हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी के घर की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अबू अय्यूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोज़ाना खाना महफूज रखते थे, जब आप तशरीफ़ ना लाते तो पहले खाना को खिला दिया जाता, यानी पहले आपके लिए रखते, किसी वजह से आप ना आते तो फिर बच्चों को खिलाते। जब दरवाजे पर पहुंचे तो उम्मे अय्यूब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों को खुशामदेद कहा, वेलकम कहा, यानी अबू अय्यूब की बीवी ने। आपने दरियाफ्त फरमाया कि अबू अय्यूब अल अंसारी कहाँ हैं? और वो घर के करीब ही नखलस्तान में मसरूफ़ अमल थे, यानी नखलस्तान जैसे बाग है या छोटा सा खेत है, वहाँ काम कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम की आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए आए। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को खुशामदेद कहा और अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, खैरियत तो थी? आप इस वक्त मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ न लाए जिस वक्त रोज़ाना तशरीफ़ लाया करते थे। आपने फरमाया, हाँ सच है, आज कुछ ताखीर हो गई। پھر حضرت ابو ایوب الانصاری جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ سے خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں یعنی کھائیں، اور میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے، دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی ہو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں سیر کیا یعنی پیٹ بھر کر کھلایا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن ابو ایوب الانصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب، اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حصے کا ٹاپک لکھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ، ان کی باتیں سنتے ہوئے دل پہ چوٹیں پڑتی ہیں نا۔ کیا وہ جذبے تھے، کیا وہ محبتیں تھیں، کیا وہ حالات تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی باتیں، کہ جو آج تک یہ لوگ ہمارے لیے نشان منزل بنے ہوئے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس میں آپ نے خود بھی محسوس کی ہوگی، جذبات کی گرمی، اور کہیں کچھ ایسی باتیں کہ جو واقعی انسان کو بہت زیادہ بے چین کر دیں، کوئی رلا دے اور کہیں ہنسا دے۔ یہ زندہ کردار تھے، ان کے جذبے سچے تھے۔ اگر آپ اس حصے پہ غور کریں، اور وہ کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے دنیا کے تین بہترین انسان گھر سے نکلے، اللہ کا نبی اور ان کے بہترین امتی راستے میں کھڑے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ہمیں بھی کبھی اللہ کے راستے میں ایسی بھوکیں ستائیں، کوئی ہمارے پاس بھی ایسی حجت قیامت کے دن ہوگی کہ اللہ ہم تیرے کاموں کی وجہ سے کھا نہ سکے۔ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ کھانا نہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کھانے کو وقت نہ ہو، آپ کے پاس اس اہتمام کا وقت ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بہترین پڑوسی ہونے کی بات بھی اسے سمجھ آئی، نیبر تھے۔ صرف یہ نہیں کہ 6-7 ماہ جو باپ ان کے ساتھ رہے اور آپ نے اسی وقت ان کا اہتمام کیا، بلکہ بعد میں بھی آپ کے لیے کھانا بھیجتے تھے۔ یہی تو تھیں ان کی وہ نیکیاں کہ جب ان کے نام آج تک کتابوں میں باقی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے بہترین چیز لے کے آئے۔ ایک ہوتا ہے انسان جو رکھی رکھی چیز ہے اس کو رکھ کے دے دے کہ اس کو کھا لے، فریش کھجوریں لائیں کہ کچھ کچی کھائیں کچھ تر کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز اس قسم کی دعوتیں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جانور کو جب ذبح کیا اور اس کو رکھا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ دیکھو दूध देने वाले जानवर को ज़बह न करना, इससे क्या पता चलता है कि खाएंगे तो एक दफ़ा और पेट में चला जाएगा, लेकिन दूध जो रोज़ एक चलती हुई नेमत है उसको ज़ाया करने से बचना है। मेरा दिल कट गया जब अल्लाह के नबी सल्लम को अपनी बेटी की याद आ गई। अब देखिए कि नबी हैं, दीनदार हैं, लेकिन रिश्तों की मोहब्बत दिल में है, जज्बात है। इससे आपको एक बाप की मोहब्बत नहीं बेटी के लिए दिखती? आज भी वो माएँ जो घरों में काम करती हैं, जब बहुत दिन के बाद उनके सामने अच्छा खाना आता है तो वो उसमें थोड़ा सा छुपा के पोटली में रख लेती हैं। क्या बाजी, घर जाके खाऊंगी, अभी नहीं खा रही। क्यों, बच्चे भी साथ खाएंगे। ये जिंदा किरदार थे, इन किरदारों को आज लोगों की निगाहों में लाने की ज़रूरत है ताकि लोग इन लोगों के जैसे बनने की कोशिश करें। आज हम जब दीनदार का एक तसव्वुर देते हैं तो बड़ा रूखा फीका, कठोर, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, लोगों से कटा हुआ। हालांकि जो अल्लाह के साथ मोहब्बत रखता है वो उसके बंदों के साथ भी रखता है। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी का ये कहना कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। इसी मौके पे आता है एक रिवायत में कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूर या अंगूर का एक दाना पकड़ के मुँह में डालना चाहा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर, ज़रा देख के खाना, इस नेमत का सवाल होगा। तो उन्होंने अपने हाथ से वो दाना फेंक दिया। अल्लाह के नबी, इतने दिन बाद मिल रहा है, क्या फिर भी हिसाब होगा? फरमाया, हिसाब तो होगा, हम भी तो कभी अपने दस्तरखान को देखें। मैं चाहूँगी कि इसमें से एक छोटी सी एक्टिविटी आप भी अपने लिए कीजिए इस जुमले की रोशनी में कि फातिमा ने ये खाना कई दिन से नहीं खाया। आपने इसके बाद का जो भी खाने का वक्त आपके पास आएगा उस वक्त इस बात को याद करना है। हमारे तो ये रूटीन के खाने हैं, गोश्त भी पकता है, सैलड भी होता है, फ्रूट भी होता है। यानी अगर आज हमें सालन, रोटी और साथ खजूरें मिल जाएं तो क्या हमारे लिए भी ये बात होगी कि ऐसा खाना तो बहुत दिन तक नहीं खाया? ये वो लोग हैं जो बेहतरीन थे और बेहतरीन काम कर गए और फिर उसके बाद दुनिया में अपना नाम बना गए। तो अच्छे काम जो हैं वो भरे हुए पेट के साथ अक्सर नहीं होते।